سورة حاميم سجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. حامیم اتاری ہے بڑے مہربان بڑے رحم کرنے والے کی طرف سے ایسی کتاب جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس عالم کے قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. بشیرم و نذیرہ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا. پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں. یہ کون ہے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّا. اور انہوں نے کہا کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے یعنی بوجھ اور ہم میں اور تم میں ایک حجاب ہے. اچھا تو اب اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 1 سے 5. 1 to 5 ان آیات کا ٹاپک ہے ہمارے اور تمہارے سٹیٹس میں فرق ہے. سٹیٹس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کا نام دیا. یہ وہ پردہ ہوتا ہے جو لوگوں کی عقلوں پہ پڑا ہوتا ہے. کچھ لوگ اتنے سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں کہ ایک بندے کی ٹھیک ٹھاک صحیح بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے سٹیٹس کے لوگوں کی نہیں. ایسی چیزیں اصل میں تکبر کی علامت ہوتی ہیں. جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا وہ اللہ کے نبیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر کہ ہم لوگ جو ہیں بڑے ہیں اور ہماری ہی بات ماننے کے قابل ہے اور اگر وہ بات ان کے ذرا سے حالات اور ماحول کے اوپر زد ڈالتی ہے تو وہ اس وقت اس بات کو نہ سننے کی نیت سے ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں. اور یہ صرف ایک سوچ کا فرق ہوتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 سے. قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ایک تم جیسا ہی انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو. اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے. کون مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ تھی آیت نمبر 6 سے 8. 6 سے 8 ان آیتوں کا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے منکر آخرت کے بھی منکر ہوئے. یہاں آپ ایک بہت توجہ طلب چیز دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکین کی بات کی. عموماً جہاں شرک کا لفظ آتا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا تعلق توحید سے ہوگا اللہ کی ذات سے ہوگا. لیکن یہاں جس شرک کا تعلق ہے وہ اللہ کے حکم میں شرک ہے. جس طرح ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے نا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی شرک نہیں کر سکتے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا مال میں سے کچھ حصہ دو یا اسی طرح اپنے نفس کو پاک رکھو. جب لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مشرک بن جاتے ہیں. سورہ یوسف میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ کچھ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں. تو کبھی بھی انسان اللہ کے کسی حکم کو چھوٹا نہ سمجھے یہ کہہ کر کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے ایک ہی تو بات ہے نا. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. لوگ تھے انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ تو ایک ٹیکس کی قسم ہے, یہ تو جزیہ ہے. نان مسلم سے آپ لوگ جزیہ کہہ کے لے لیتے ہیں, مسلمانوں سے زکوٰۃ کہہ کے لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اس بات پہ اتنے غصے میں تھے انہوں نے کہا ان سے جہاد کیا جائے گا. لوگوں نے کہا ابو بکر یہ مسلمان لوگ ہیں آپ ان سے جہاد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ہمیں اس سے جہاد کریں گے. اسلام کے یہ بیسک پلرز میں سے ہے نا. آج مسلمانوں میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہیں نماز نہیں پڑھتے, اور کتنے ہیں جو مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے. ایک کام کر لیتے ہیں تو دوسرا نہیں کرتے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں چلے اب سارے کام بھی تو کرنے ضروری نہیں ہے نا, چلو کچھ تو اچھا کرتے ہیں. اس کی پھر ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ رکھوں گی کہ جیسے آپ امتحان دیتے ہیں تو 5 سبجیکٹس ہیں نا, ہر سبجیکٹ میں پاس ہونا لازمی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ چونکہ میرے میتھمیٹکس میں 100 میں سے 100 آ گئے ہیں تو لہٰذا مجھے کیمسٹری میں ایسے ہی پاس کر دیا جائے. امتحان کے ہر پرچے کا الگ سے حساب ہوگا. تو لہٰذا اگر زندگی میں کہیں بھی ایسی کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی ہے ہم نے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 سے. आप कह दीजिए कि क्या तुम इस अल्लाह का इनकार करते हो और तुम इसके शरीक मुकरर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा कर दी। सारे जहानों का परवरदिगार वही है और इसने जमीन में इसके ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए और इसमें बरकत रख दी और इसमें रहने वालों की गजाओं की तजवीज भी इसी में कर दी सिर्फ 4 दिन में जरूरतमंदों के लिए यकसां तौर पर। तुम मस्तवा इलस्समा फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ वो धुआं सा था। बस उसे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों खुशी से आओ या ना खुशी से। दोनों ने अर्ज किया कि हम बखुशी हाजिर हैं। बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में इसके मुनासिब अहकाम की वही भेज दी और हमने आसमाने दुनिया को चिरागों से जीनत दी और निगेबानी की। ये तदबीर अल्लाह गालिब और दाना की है। ये थी आयत नंबर 9 से 12। 9 to 12 इन आयतों का टॉपिक है खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, आना तो पड़ेगा। इस हिस्से को हाईलाइट कर लीजिए। आयत नंबर 11 में है ये चीज़। तवन ओ करहन, अल्लाह ताला ने यहाँ ज़मीन और आसमान के खुशी या ना खुशी से आने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम खुशी से आएंगे। हम अपने आप को चेक करें कि जब हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है तो क्या हम खुशी से करते हैं कि ना खुशी से। जब हम किसी काम को खुशी से नहीं करते ना तो उस काम की बरकत खत्म हो जाती है, फिर वो काम हमें और मुश्किल लगता है। इस आयत पे हमारा अमल क्या होना चाहिए कि नेकी के जिस काम का मौका मिल जाए ना उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। बस दफा हम उस अजर को नहीं देख रहे होते ना जो हमारे नामे अमाल में होता है तो हम किसी खुशी पे ना खुशी भी महसूस करने लगते हैं। तो फौरन ऐसे वक्त में कायनात को देखिए कि वो इतनी बड़ी हो कि अल्लाह के हुक्म पे खुशी से आने वाली है, तो फिर मेरा क्या होगा या मेरी अल्लाह की निगाहों में क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैं ना खुशी से करूं। देखिए दुनिया में अगर आप किसी की दावत करें, एक दावत है जब खुशी खुशी करते हैं और एक वो है जब बादिल नख्वास्ता करते हैं। अब दावत करनी पड़ेगी, ये जुमला कब बोलते हैं हम, जब खानदानों में दावत करनी होती है और वो भी ससुराल में। किसी की शादी हुई अब दावत करनी पड़ेगी, अब पकाना पड़ेगा। अच्छा बस लोग पकाते भी हैं और साथ भी आसान जतलाते रहते हैं, बहुत मुश्किल होगा करना पड़ेगा। उनको तो बेचारों को पता नहीं होता ना, सारा दिन यहाँ से झगड़ते रहते हैं क्यों बुलाया क्यों कहा, और उनको देखते ही कहते हैं बड़ी खुशी हुई। जब हम किसी को ये जुमला बोलते हैं ना कि बहुत खुशी हुई हमें आपके आने की, तो अगर झूठ है ना तो मत बोला करें। छोटी सी एक आपको टिप बता देती हूँ, अगर आपको किसी से खुशी नहीं हुई ना चुप रहे, कोई आपको नहीं कहेगा कि आपने मुझे देख के ये जुमला क्यों नहीं कहा कि आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। सच्ची बात है, इंसानों का तो ये मामला है ना, अल्लाह ताला के साथ ऐसा मामला तो नहीं हो सकता। हम नमाज पढ़ते हैं, कैसी पढ़ते हैं, फिर नमाज का वक्त हो गया, अगर हम नमाज पढ़ के भी जाया होगी, अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि आज उसकी जो दावत हुई है बड़ी नाखुशी से हुई है या जो उसको तोहफा दिया गया वो बड़ी नाखुशी से दिया गया है, तो आप बताइए कि क्या वो खुश होगा। इसी तरह जब अल्लाह की नज़र तुम्हारे दिलों पे है, जब हम कोई काम करते हैं और खुशी से नहीं करते ना तो वो ऐसे ही है कि जैसे किया ना किया एक बराबर हो गया। तो ज़मीन और आसमान से यही सबक हमने सीखना है कि जिस काम की तौफीक मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमने कर लिया और अल्लाह ताला इस काम को फिर हमारी तरफ से कबूल भी फरमाए। फ़ैन आरतु फ़कुल अनज़र तुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद, अब भी ये रूगरदां हो तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क से डराता हूँ जो मिसल आदियों और समूदियों की कड़क के होगी। इनके पास जब इनके आगे पीछे से पैगंबर आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेज देता, हम तो तुम्हारी रिसालत के बिल्कुल मुनकर हैं। अब आत ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे हमसे ज्यादा जोरावर कौन है, क्या इन्हें ये नजर ना आया कि जिसने इनको पैदा किया वो इनसे बहुत ज्यादा जोरावर है। वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। फरसलना अलैहिम रीहन, फिर हमने इन पर एक तुंदो तेज आंधी मनहूस दिनों में भेज दी ताकि इनको दुनिया की जिंदगी में जिल्लत के अजाब का मजा चखाएं और यकीन मानो कि आखरत का अजाब इससे बहुत ज्यादा रुसवाई वाला है और वो मदद न किए जाएंगे। रहे समूद, सो हमने इनकी भी राहबरी की फिर भी उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी जिस बिना पर इन्हें सरापाए जिल्लत के अजाब की कड़क ने इनके करतूतों के बायस पकड़ लिया। हाँ ईमान वालों और नेक लोगों को हमने बाल बाल बचा लिया। ये थी आयत नंबर 13 से 18। 13 to 18 इसका उन्वान है हिदायत पर अंधा रहने को पसंद किया। अल्लाह अकबर, ये किसी कौम के साथ अल्लाह ताला की पकड़ की एक अलामत होती है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत देना चाहता है लेकिन वो हिदायत की बजाय अंधा रहना चाहते हैं। यही मामला कौमों के साथ होता है, यही मामला इंसानों के साथ होता है। बस दफा इंसान की जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि वो हिदायत पा ले, लेकिन वो हिदायत पाना नहीं चाहता। नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला उसको वो हिदायत देना नहीं चाहते। एक वक्त वो होता है कि इंसान कहता है कि मुझे अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आना, और एक वो वक्त होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुम्हें आने नहीं देना। जो बंदा एक दो बार की दावत पे अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आना चाहता, अल्लाह ताला फिर उसको उस दीन की तरफ बुलाना नहीं चाहता। देखिए, आप किसी को अपने घर पे बुलाएं ना, और वो ना आए बार बार आपके बुलाने पे, कहने पे, तीसरी दफा वो आपको नहीं बुलाएगा। ऐसे ही है ना, कहते हैं अब इन्होंने आना तो है नहीं। हिदायत भी एक पुकार होती है और एक कॉल होती है। तो नतीजा क्या निकलता है कि जब लोग उस पे नहीं आते तो अल्लाह ताला फिर उनको उससे रोक लेता है। अल्लाह ना करे कि हम सब में से किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आए। आयत नंबर 19 से देखेंगे, 19। व यौम युहशरु अदाउल्लाह इलन्नारि फहुम यूज़ऊन। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोजख की तरफ लाए जाएंगे और इन सबको जमा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब बिल्कुल जहन्नुम के पास आ जाएंगे, इन पर इनके कान और इनकी आंखें और इनकी खालें इनके अमाल की गवाही देंगी। ये अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? वो जवाब देंगी, हमें इस अल्लाह ने कुव्वते गोयाई यानी बोलने की ताकत अता फरमाई, जिसने हर चीज को बोलने की ताकत बख्शी है। इसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। और तुम अपनी बदअमालियां इस वजह से पोशीदा रखते ही न थे कि तुम पर तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारी खालें गवाही देंगी। हाँ, तुम ये समझते रहे कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसमें से बहुत से आमाल से अल्लाह बेखबर है। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़नन्तुम बिरब्बिकुम। तुम्हारी सी बदगुमानी ने जो तुमने अपने रब से कर रखी थी तुमको हलाक कर दिया, बिलाखिर तुम नुकसान पाने वालों में से हो गए। अब अगर ये सब्र करें तो भी इनका ठिकाना जहन्नुम है, और अगर यूजर और मुआफी के खासगार हों तो भी मुआफ नहीं रखे जाएंगे। ये थी आयत नंबर 19 से 24, 19 to 24। इसका अनवान लिखेंगे, जिसकी हिफाजत करते रहे वही हमारे खिलाफ गवाही देगी। यहाँ स्किन्स की बात हुई कि स्किन्स क्यामत के दिन बोलेंगी। आज भी दुनिया में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो इसको कबूल कर रहे हैं। यानी जिस तरह आपने टेप रिकॉर्डर को देखा है ना, उसके अंदर एक पतला सा धागा चल रहा होता है ना, जिसको रील्स बोलते हैं, मैं तो उसको भी देख के हैरान होती हूँ कि कैसे उसके अंदर आवाज़ टेप में आ जाती है। इसी तरह जो सीडी आप लोग सुनते हैं उसके अंदर बारीक सी रेस होती हैं जिससे आवाज़ होती है। अब डॉक्टर्स ने ये साबित किया कि ये हमारी स्किन जो ना, ये किस्म का टेप रिकॉर्डर है, और हम जो कुछ कर रहे हैं ना वो इसके ऊपर सेव हो रहा है। बल्कि बास ने तो इसके अंदर से आवाज़ें सुनी हैं। यदि लोग अब कोशिश कर रहे हैं, जो ओल्ड टाइप के लोग थे ना, जैसे पुराने साइंटिस्ट और दूसरे थे, तो वो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं ना, अब मैं ये जो बोल रही हूँ, हमारी ये आवाज़ की लहरें जो ये फिजा में सेव हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमारी स्किन पे होती हैं, कुछ फिजा में हो रही हैं, और इसको प्रूफ किया हुआ। अब सिर्फ इस बात की कोशिश है कि उसको दोबारा सुने कैसे। जैसे आप सोच लें कि कैसेट को रिवाइंड कैसे करें, इस वक्त साइंटिस्ट जो वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि वो आवाज़ें हम वापस कैसे सुने। और उनका ख्याल क्या है कि इस सूरत में हम जो फेमस लोग या बहुत मारूफ थे या जिन्होंने इंसानियत को फ़ायदा दिया, तो दोबारा उनकी वो टेक्निक्स और वो सारी चीज़ों को सेव करके इंसानियत को फ़ायदा दें। चले, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये स्किन कल क़यामत के दिन बोलेगी। क्या करते थे और इसके साथ हम क्या करते हैं, और इस स्किन के भी गुनाहों को अगर हम देख लें तो मेरा ख्याल है कि हमें खौफ आएगा। दुनिया में भी क़यामत से पहले ये दरख्त भी बोलेंगे, पहाड़ भी बोलेंगे। हदीस में आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो यहूद से मुकाबला होगा ना, तो कोई यहूदी अगर किसी दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो वो उसको बता देंगे किसके पीछे। तो क्या अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस स्किन को नहीं बुला सकता? इन चीज़ों को देखें तो क्या लगता है कि हमारे दुश्मन हमारे साथ साथ फिर रहे हैं? इस स्किन की तो हम सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, और यही स्किन अगर हम गलत काम करेंगे तो क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाहियाँ देगी। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन चीज़ों से।